गिरजा कुमार माथुर के कविता का शीर्षक है आज है केसर रंग रंगे वन। आज है केसर रंग रंगे वन का सारांश और मूल भाव बताइए। सारांश, फागुन का महीना, पूर्णिमा की रात, अजीब आनंद, उल्लास, उत्साह एवं स्पंदन मन मस्तिष्क को झंकृत कर देती है। श्री गिरजा कुमार माथुर जो फ्रायड के मनोवैज्ञानिक भाव से पूर्णतः प्रभावित हैं, उनमें फाल्गुन माह के पूर्णिमा की रात को काव्य भाव स्वयं प्रस्फुटित कर देती है। उनका विचार है कि फाल्गुन माह के पूर्णिमा की रात में सर्वत्र केसरिया रंग स्वयं आच्छादित हो जाता है। वन, बाग, तड़ाग, मानव मन सबके सब अजीब रंग, एक तो बसंत ऋतु, दूसरे फागुन का महीना, तीसरे पूर्णिमा की शाम एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न कर देती है। घर बाहर, नगर वन, यत्र तत्र सर्वत्र पूर्णिमा की चांदनी आच्छादित हो जाती है। जीवन में नव स्पंदन, नवीन सुगंध पुनर्जागृत हो जाती है। जैसा कि कवि का विचार है कि फागुन का यह शीतल मंद सुगंध बयार एक रहस्यमयी उल्लास जागृत कर देती है और मन में छुई मुई सा प्यार जागृत हो उठता है। मन गौर वर्णी से प्यार करने का अनायास ही मन मांगने लगता है। कवि के अनुसार यह मन का दोष नहीं, यह मूलतः मौसम का प्रभाव है, क्योंकि आज तो सब वन, बाग, तड़ाक प्रकृति के सर्वांग आह्लादित हैं एवं केसर के रंग सुगंध में डूब चुके हैं। फागुन मास के पूर्णिमा की चांदनी के प्रभाव में समस्त वातायन केसरियाना रंग कर चीर नवीनता, चीर सौंदर्य, चीर यौवन को पुनर्जागृत कर देता है और मानव जीवन फिर भी एक बार नवीनता का अनुभव करने लगता है। उसमें नव शक्ति, नया ऊर्ज एवं नवीन परिकल्पना पुनः समायोजित होने लगती है। कविता का संपूर्ण भाग इस प्रकार है। आज है केसर रंग रंगे वन, रंजित शाम भी फागुन की, खिली पीली कलीसी, केसर के वसनों में छिपा तन, सोने की छांसा बोलती आँखों में, पहले वसंत के फूल का रंग है, गोरे कपोलों पे हौले से आ जाती, पहले ही पहले के रंगीन चुंबन की सी ललाई, आज है केसर के रंग रंगे गृह द्वार नगर वन, जिनके विभिन्न रंगों में है रंग गई, पुनों की चंदन चांदनी जीवन में फिर लौटी मिठास है, गीत की आखिरी मीठी लकीर सी, प्यार भी डूबेगा गोरी सी बाहों में, ओठों में, आँखों में, फूलों में डूबे ज्यों, फूल की रेशमी रेशमी छाहें, आज है केसर रंग रंगे वन। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत अवतरण श्री गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित आज है केसर रंग रंग वन नामक काव्य से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत अवतरण में श्री माथुर जी ने फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक वाद को बड़े ही मार्मिक हृदय स्पर्शी भाव से प्रस्तुत किया है। फागुन माह के पूर्णिमा की चांदनी भरी शाम जो वसंत ऋतु की पूर्ण यौवन काल है, उस दिन यत्र तत्र सर्वत्र वैचारिकता का आभास स्वयं होने लगता है। मानव मन परमानंद में समाविष्ट होना चाहता है, क्योंकि मदन की मार से मन मुकुलित होता है। व्याख्या, संपूर्ण वातायन में आनंद का राग आच्छादित है। पूरे वर्ष भर मनुष्य अनेकानेक जीवन की झंझावतों से त्रसित होता रहता है, किंतु आज जबकि गृह द्वार नगर वन बाग तड़ाग एवं प्रकृति के समस्त अवयव फागुन की पूर्णिमा की चांद भरी शाम में केसरिया रंग में पूरी तरह डूब चुकी है, और सर्वत्र आनंद उल्लास छाया है। फलतः मानव मन में जीवन में फिर एक बार नव स्पंदन, नया राग एवं नवीन उल्लास जागृत होती है। मन में नवगीत प्रस्फुटित होने लगते हैं और एक अजीब सिहरन जाग उठता है और प्रेयसी के बाहों में झूल जाने का मन करने लगता है। इतना ही कवि का भाव पूर्णतः फ्रायड के भावानुकूल उस प्रेयसी की अंग प्रत्यंग अधरों नेत्रों आदि समस्त भाव भंगिमा में जमा समा जाने का मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह मन दोष नहीं, यह मौसम का दोष है। वातायन ही ऐसा है कि मन इटला जाता है, क्योंकि केसरिया वयार एवं केसरिया रंग सब कुछ न्योछावर करा देता है। विशेषता पहला, काव्य व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक है। दूसरा, भाषा मिली जुली है, कहीं संस्कृत निष्ठ है तो कहीं तत्सम तद्भव तो कहीं उर्दू के शब्द भी पिरोए हुए हैं। तीसरा, अनुप्रास उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार का प्रयोग है, साथ ही मानवीकरण है। चौथा, सामाजिक भाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। पांचवा, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर के दूसरे कविता का शीर्षक है छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूल सी एक छुगन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृण है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। दुविधा हर हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। कविवर श्री गिरिजा कुमार माथुर प्रस्तुत काव्य छाया मत छूना मन के अंतर्गत मानव जीवन के यथार्थ का चित्रण भले बड़े ही मार्मिक रूप से किया है। चूंकि प्रस्तुत काव्य छायावाद एवं प्रयोगवाद के मध्य एक द्वंद्व प्रस्तुत करती है, फलतः दोनों ही कलाओं का प्रभाव प्रस्तुत हुआ है। यहाँ कवि ने बीते हुए क्षणों की वेदना में आक्रांत मानव का चित्रण किया है और कहा है छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। क्योंकि कल जो बीत चुका है वह आनंददायी था, स्पंदन मुक्त था, उत्साह एवं उल्लास पूर्ण था, किंतु आज का यथार्थ कठिन है, करकर है, दुखदायी है। अतः कवि मन को संबोधित करते हुए कहता है कि बीते हुए कल की याद दिलाना व्यर्थ है, क्योंकि वह किसी भी अवस्था में लौटकर दोबारा नहीं आ सकता। बीते हुए की दुखद याद से न तो यश की प्राप्ति हो सकती है, न वैभव में विकास हो सकता है, न प्रतिष्ठा एवं सामर्थ्य बढ़ सकता है, क्योंकि बीते हुए कल के पीछे भागना मात्र मृग तृष्णा है जो हर तरह से अपर्याप्त है। अर्थात कवि संदेश कर देता है कि वर्तमान के कठिन यथार्थ का सामना कर उसका पूजन कर यही फिर से शक्तिशाली बन सकता है। हे मन, यदि तुम दुविधा में पड़कर मात्र भूतकाल के आनंद में विभोर रहोगे तो तुम वर्तमान से तिरस्कृत तो कर दिए जाओगे, साथ ही साथ अपने सुनहले भविष्य को भी नष्ट विनष्ट कर डालोगे। अतः भविष्य के संरचना हेतु वर्तमान का समुचित प्रयोग कर मात्र छाया के पीछे भागना मृग तृष्णा है। इससे दुख दूना होता है और वर्तमान व्यर्थ में व्यतीत होता है, साथ ही साथ भविष्य भी विकृत हो जाता है। कविवर श्री माथुर छाया मत छूना मन काव्य के माध्यम से संदेश देते हैं कि भूत कितना ही आनंददायी एवं उल्लासमय क्यों न रहा हो, उसके याद में वर्तमान एवं भविष्य को छत विक्षत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतकाल का आनंद मात्र मृग तृष्णा है। अतः हमें वर्तमान के यथार्थ का सामना पूरी बल विवेक वृद्धि से करना चाहिए, सुनहले भविष्य की सुंदर संरचना संभव हो सके। विशेषताएं। पहली, प्रस्तुत काव्य में कवि ने विवेचनात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। दूसरा, भाषा की दृष्टि से काव्य परिमार्जित शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। तीसरा, काव्य में मन का मानवीकरण हुआ है। चौथा, सामाजिक चिन्हों का खुलकर प्रयोग किया गया है। पांचवा, काव्य मुक्तक छंद में प्रस्तुत हुआ है। यहीं पर गिरिजा कुमार माथुर की कविता एवं उनकी व्याख्या समाप्त होती है।